प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन।
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जीवन जो सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता मित्रों व भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र बाइबल की रूपरेखा अर्थात मार्गदर्शिका से संबंधित कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रकाशन और प्रेरणा के द्वारा प्रमाणित होता है। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से यह सीखा कि परमेश्वर का वचन बाइबल है, अर्थात बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसको प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर का प्रकाशन और प्रेरणा हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को सिखाता है। हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के वचन की आत्मिक सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकट करता है। और प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को ये बात स्पष्ट की कि शारीरिक मन परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता और इसलिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को सीखें। यह सत्य है कि हम अधिकांश बातों को आंखों से देखकर तथा कानों से सुनकर सीखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, किंतु प्रेरित पौलुस बताते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ना तो हम आंखों से देखते हैं और ना कानों से सुनते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें ना तो हमने कानों से सुना है और ना आंखों से देखा है, ऐसी बातें मस्तिष्क में भी नहीं आज समा सकती, तब आप इस संसार में उन्हें कैसे जान सकेंगे। परमेश्वर का वचन यहां उत्तर देता है। पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 10वें पद में हमको बताया गया है कि ऐसी गुप्त बातों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट करता है। मित्रवर, पवित्र आत्मा ही को हमारा शिक्षक होना चाहिए। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही समझ सकते हैं। वही हमें सिखा सकता है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन को हमारे लिए वास्तविक बना सकता है। आपको स्मरण होगा कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अपने विषय में एक प्रश्न किया था और वो प्रश्न था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और तब पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय शिष्य था, जो शमौन भी कहलाता था, उसने जो उत्तर दिया वह पवित्र आत्मा का कार्य था और वहां उसने एक महान रहस्य को उजागर किया। और पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और सब सुनने वालों पर स्पष्ट किया कि ये बात मांस और लहू द्वारा प्रकट नहीं हुई, किंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट की है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा इसे हमारे लिए वास्तविक बनाता है। श्रोता, आज केवल परमेश्वर है जो पवित्र बाइबल को हमारे लिए वास्तविक बनाने के लिए उसे हमारे समक्ष खोलता है। आपको स्मरण होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह जब इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे तो दो व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई और प्रभु यीशु मसीह उन दोनों व्यक्तियों के साथ हो लिए। ये दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और वे दोनों मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की बातों में उलझे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही उनकी समस्या का समाधान किया। उन्होंने हस्तक्षेप करके उन्हें सब कुछ बताया, स्पष्ट किया। मित्र, हम ऐसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो अन्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तक है, और मैं न केवल ये विश्वास करता हूं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है, वरन मेरा विश्वास ये भी है कि यह पुस्तक मनुष्य के लिए एक बंद पुस्तक है। यदि पवित्र आत्मा आपकी सहायता ना करे, आपके हृदय को ना खोले और उसे आपके लिए वास्तविक ना बनाए, तो ये पुस्तक आपके लिए एक बंद पुस्तक है, आप इसे समझ नहीं सकते। अपने पुनरुत्थान के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम वापस आए, तब उन्होंने अपने प्रेरितों को शिक्षा दी और उनसे इस प्रकार से कहा, लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 44वें पद को आप हमारे साथ देखें। इस पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अर्थात यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। अब ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह ने यह विश्वास किया कि प्रभु के सेवक मूसा ने पंच ग्रंथ अर्थात पेंटाट्योक को लिखा। उनका यह विश्वास था कि नबियों ने उनके विषय में नबूबतें की और भजन संहिता भी उन्हीं की ओर संकेत करती है। और अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जिसे हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 45 पद पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। इस पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने अर्थात यीशु ने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। ध्यान दें श्रोता, उसने अर्थात यीशु ने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। प्रिय मित्र, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी समझ को नहीं खोला है, तो आप परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं समझ सकेंगे। आपके लिए ये आवश्यक है कि आपकी बुद्धि प्रभु जी की ओर से खोली जाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन की बातों को समझ सकें। यही कारण है कि जब हम इस पुस्तक के समीप आएं, तो अपने मस्तिष्क की नम्रता के साथ आएं। हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष नम्र और दीन बनाएं, और अपनी सारी उत्तम शिक्षा, सांसारिक ज्ञान को एक ओर रख दें, अपने बौद्धिक स्तर को भी भूल जाएं। तभी हम परमेश्वर के वचन की बातों को समझ सकेंगे। परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि प्रदान करता है। हम पहला कुरिन्थियों में वापस जाते हैं, और कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री में इस विषय में प्रेरित पौलुस के कथन को पुनः पढ़ते हैं। आप हमारे साथ देखें पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बता रहे हैं, उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य, ध्यान दीजिए श्रोता, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है, मित्रवर, यही कारण है कि जब कभी मेरे पास कोई नामधारी ईसाई भाई या बहन आता है, कभी कभी प्रचारक भी आते हैं और कहते हैं कि वह इस बात पर अब विश्वास नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेरित पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर की बातें समझना शारीरिक व्यक्ति के क्षेत्र की बात नहीं है, यह आत्मिक व्यक्ति के क्षेत्र का विषय है। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट बता दिया है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। मित्र, मार्क ट्वाइन एक महान विद्वान का नाम है। मार्क ट्वाइन नामक व्यक्ति जो मसीही विश्वासी नहीं था, दूसरे शब्दों में वह मसीही व्यक्ति नहीं था, उसका कहना था, पवित्र बाइबल की जो बातें मेरी समझ में नहीं आती उनकी ओर से मैं चिंतित नहीं हूं, किंतु मैं उन बातों की चिंता करता हूं जो मेरी समझ में आती हैं। मित्रवर, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें एक अविश्वासी व्यक्ति भी समझ सकता है और समझ लेता है, किंतु उन्हीं बातों के द्वारा वह परमेश्वर के वचन को ठुकरा देता है, उसका पालन नहीं करता। और अब जैसा कि मैं अपने विषय में आगे बढ़ता हूं और प्रबोधन अर्थात इल्यूमिनेशन विषय को छोड़कर मैं अगले विषय पर आता हूं, किंतु इससे पूर्व कि मैं इस प्रबोधन नामक विषय को समाप्त करूं, इसका अंत करूं, मैं इसके अंत में एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूं। और वो बात यह है कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपके मन की आंखों को खोल सकता है कि आप मसीह यीशु को देख सकें, उन्हें स्वीकार कर सकें और उन पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कर उन्हें ग्रहण कर सकें। ये कार्य केवल परमेश्वर का है। सो इस प्रकार से हमने तीन विषयों पर ध्यान किया। हमारा पहला विषय था प्रकाशन, दूसरा विषय था प्रेरणा और तीसरा विषय है प्रबोधन। और अब हम आते हैं चौथे विषय पर। ये चौथा विषय है व्याख्या। व्याख्या से हमारा तात्पर्य उस व्याख्या से है जो मैं और आप परमेश्वर के वचन की दिया करते हैं। और इसी कारण से मसीहत में अनेक समुदाय देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक झुंड अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं और इसलिए अनेक समुदाय उत्पन्न हो गए हैं। और जहां असहमति है वहां कोई ना कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से गलत है। जी हां, असहमति तभी उत्पन्न होती है जब कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत होता है। इसलिए जब हम पवित्र बाइबल की व्याख्या करते हैं तो ऐसे अनेक महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। पहला नियम है पवित्र बाइबल का हमारे लिए जो उद्देश्य है उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए ये कार्य अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। बाइबल को टुकड़ों में यहां वहां से पढ़ना हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता। ऐसा करने से पवित्र बाइबल का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। आवश्यक है कि हम संपूर्ण बाइबल को पढ़ें और अपने विषय से संबंधित समस्त पदों को देखें ताकि पवित्र बाइबल का उद्देश्य पूरा हो। दूसरी बात है, जिस व्यक्ति को पवित्र वचन लिखा गया है उसको भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में यहोशू की पुस्तक का प्रथम अध्याय उसका दूसरा पद। इस पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ इस यर्दन नदी को पार कर। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि आज्ञा यहोशू को दी गई थी, किंतु इसमें हमारे लिए महान संदेश छिपा हुआ है। ये वचन यहोशू को दिया गया किंतु इसमें हमारे लिए भी संदेश है। ध्यान रखें, समस्त पवित्र शास्त्र मुझको नहीं लिखा गया, किंतु समस्त पवित्र शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है। यह सबसे अच्छा नियम है जिसे हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए, और हम इसे मस्तिष्क में रख सकते हैं। तब तीसरी बात है, पवित्र वचन के किसी भी पद से पहले और बाद में जो तत्काल निकटतम संदर्भ है उसको अवश्य देखा जाए। वह अनुच्छेद किस विषय में बता रहा है और दूसरे अन्य अनुच्छेद उसी विषय में क्या बता रहे हैं, हम इस बात पर अवश्य ध्यान दें। बिना संदर्भ के पवित्र वचन को पढ़ना हमारे लिए हानिकारक होता है। हम उसके उद्देश्य को, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। तब चौथी बात है, मूल बात को खोजें। मित्रवर, पवित्र बाइबल के अध्ययन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बात मूलभूत रूप से कही गई है उसे खोजने का भरसक प्रयास करें। अच्छे और सफल बाइबल अध्ययन के लिए इब्रानी तथा यूनानी भाषाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। पवित्र बाइबल की सही मूल भाषाएं यही हैं। हम आधुनिक बाइबल रूपांतरों को पढ़ने की सलाह नहीं देते, क्योंकि सभी अनुवादक अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को उसमें रख देते हैं, जो हमें मूल और खरी शिक्षा से दूर भटका देते हैं। और अनेक पाठक पवित्र बाइबल को पढ़कर परमेश्वर के विरुद्ध जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं, और वो इस प्रकार से धोखा खाते हैं। मित्र, परमेश्वर का वचन उनके लिए ठोकर का कारण बन जाता है, जबकि इसी वचन के द्वारा अनेकों को जीवन प्राप्त होता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति पवित्र बाइबल का अनुवाद कर रहा है, तो आपको उसके अनुवाद में उदारवाद का स्वाद अवश्य मिलेगा। और यदि कोई मूल सिद्धांतवादी व्यक्ति अनुवादक है, तो आप उसके अनुवाद में पवित्र बाइबल के प्रति विशेष पक्षपात की झलक को पाएंगे। और फिर भी जिन्होंने मूल अंग्रेजी भाषा से अनुवाद किए, ये वे लोग थे जिन्होंने ये विश्वास किया कि बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, और उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया गया। और जबकि वहां अनुवाद के लिए अनेक शब्द थे, किंतु उन्होंने मूल शब्द ही का प्रयोग किया, जैसे अब्बा और बैप्टाइजो शब्द। यहां केवल लिप्यंतरण किया गया है, अर्थात लिपि परिवर्तन किया गया है, अनुवाद नहीं। हमारे अधिकांश आधुनिक अनुवादक इसे आधुनिक बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा करने के द्वारा वे मूल संदेश को खो देते हैं। फिर भी जो कुछ भी हो, हमें मूल संदेश को खोजने का प्रयास करना चाहिए। और तब पांचवी बात है, पवित्र बाइबल की व्याख्या यथाशब्द की जाए। स्वर्गीय आचार्य डेविड कूपर ने इस विषय में ठीक ही कहा कि जब पवित्र शास्त्र के सीधे अर्थ से सामान्य अर्थ निकलता हो, तो दूसरा कोई अर्थ ना खोजो। इसलिए मेरे मित्र, पवित्र बाइबल के प्रत्येक शब्द को उसकी प्रारंभिक, साधारण तथा यथा शब्द, अर्थात जैसा वो है, उसी अर्थ में लिया जाए। अगलिम कार्यक्रम में हम रूपरेखा अर्थात मार्गदर्शिका से संबंधित बातों पर विचार करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी श्रोता भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनना ना भूलें। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि कार्यक्रम को समाप्त करें, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर क्षण हमको दिए कि हम आपके पवित्र वचन के अध्ययन से संबंधित बातों पर विचार कर सकें। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हमारे श्रोता भाई बहन आपके पवित्र वचन के महत्व को समझें, उसे आपके पवित्र वचन के रूप में स्वीकार करें, ग्रहण करें, ताकि उस पर विश्वास कर सकें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे श्रोता भाई बहनों को अपना वचन सिखाएं और उनके लिए अपने वचन को वास्तविक बना दें, ताकि उस पर वे विश्वास ला सकें और आपका उद्देश्य उनके जीवन में पूरा हो सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।